खास काम छे, खास काम छे, खास काम तुमको कौन सा आज तक पता ही नहीं चला कि फलानी जगह मीटिंग छे, नाम छे, मारे खास काम छे। खास ना खास काम हो तो आज छे, आना सिवा बीजा बधा गौण काम चलो। मैं सिर पर हाथ रख के कहता हूँ, व्यास पीठ पर बोल के कहता हूँ, बैठ के कहता हूँ, गर्दन पे हाथ रख के कहता हूँ कि खास में खास काम यह है, इससे बढ़कर और कोई खास काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ईश्वर का मूल्य खो दिया, और नेश्वर को इतना मूल्य दिया है कि ईश्वर उस पर कुर्बान कर दिया है, और उसको बोलते खास। जगत का कोई भी काम यदि तुम्हें खास लगता है तो समझना कि बेवकूफी मौजूद है, मूर्खता मौजूद है। जगत का कोई भी, समझो माँ मर गई है, पिता की ठाकड़ी तैयार हो रही है, वो भी खास काम नहीं है जितना तुमको आत्मा को जानने का खास काम है। मानसो तुम्हें मानसो। मैं इंदौर के सम्मेलन में गया था, और वहां का जो बाल मुकुंद नाम के सज्जन थे, सात्विक रहे होंगे, एक बार इधर दर्शन देने को आए थे और मैं नहीं था। वहां तो उनको भगवान जैसा पूजते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई संत की खोज करते करते यहाँ की खबर पाई थी और यहाँ आए थे, और मैं बाहरगाम था, चंदीराम से मिलके गए इंदौर के गीता भवन के। अपना आश्रम कुछ नहीं है, गीता भवन का बड़ा लंबा चौड़ा मैनेजमेंट बढ़िया, 10-20 लाख की तो अस्पताल बना दिए उन्होंने, और आश्रम 50-25 लाख का होगा। तो मैं वहां गया, उस हेतु गया कि उसके जो फाउंडर थे बाल मुकुंद जी, बाबा बाल मुकुंद, उनको सत्संग का और संत का कुछ समझने की उत्कंठा थी और कुछ कदर थी सत्संग की। वैसे तो मेरे शरीर की अवस्था, गाड़ी की अवस्था ऐसी थी, और मैं आपको कहूं कि तुम जब ईश्वर में होते ना तो प्रकृति क्या क्या अनुकूलता करती। तुमको एक दृष्टांत बता दूं, सच्चा घटित घटना बता दूं ना, देर तो नहीं होती ना। सूरत में शिविर थी, और सूरत के शिविर के बाद इंदौर जाने का था, कोई प्रोग्राम था, वहां सूचना भी थी कि हम आ जाएंगे, तुम कोई तकलीफ नहीं करना। गाड़ी में शिवलाल था, शंकर था, और चलाने वाला भी कोई था, ऐसे ऐसे 3-4 आदमी थे। गाड़ी बड़ोड़ा आते आते हिरणी से जब मूर्ति है गोधरा को, तो कई बार एक वृत्ति कहती है कि चलो, और फिर शिवलाल से पूछता हूँ जेऊ छे कि बापू तुम्हारी आ गया, शंकर तो तुम्हारी आ गया, ड्राइवर तू बोल कि तुम्हारी आ गया, और इधर कोई नील अहमदाबाद जाइए तो के वाले, और उनको टाइम दिया, अब क्या करें। करते 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 चौराहे पे गाड़ी आई, अब क्या करें, इधर मोड़े के इधर मोड़े, फिर एक जगह मोड़ दी इंदौर के चौराहे के रास्ते केले वाले की गाड़ी के पास। केला वाले को बुलाया, भाई अब इधर हमारे को अहमदाबाद है और इधर है इंदौर, दोनों जगह जा सकते हैं, अब कौन सी जगह जाए तू बता दे। घटित घटना है ये। उसने कहा, वो भी था अलबेला था, ये तो इधर मुड़ गए तो जाने दो बाबा इधर। मैं क्या इधर जाऊंगा तो 6 घंटे लगते, 7 घंटे, और थोड़ा थकान भी, और अभी 4 बज गए, पहुंचूंगा तो रात के बस 12-1 बज जाएगा, और यहाँ पहुंचूंगा आश्रम में तो 7-8 बजे पहुंच जाऊंगा। तो बोले कर इधर जाने दो। मैं कहता तो दोनों बाजू बोलता है, नहीं तो ठीक नहीं है। मैं ठीक बोल दे कि बस बाबा फिर तो इधर जाने दो, वैसे इधर भी जाओ तो ठीक। मैं कहता नहीं, अब ऐसा कर तू दसियाला। मैं कहता तू बाघ कांटा करो। कथाकार नहीं कर सकता है, सेठ नहीं कर सकता है, लोगों के क्या उपलोग वापर तक दसिया महाराज आने के बाद महाराज कर अष्टावक्र कहते हैं बहुना अत्र क्यों मुक्ते न, उनके लिए क्या बोला जाए महाशयों के लिए। श्लोक ऐसा रख दिया है बच्चों ने, तब बोल रहा हूँ, इतने दिनों में कभी ये बात आई नहीं थी, श्लोक के अनुरूप ही सब आ जाता है। बहुना अत्र क्यों मुक्ते न ज्ञात तत्व महाशय, जिन्होंने तत्व को जाना है महाशयों ने, उनके लिए ज्यादा अब क्या कहें, उनका क्या स्वभाव होता है, कैसे होते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूं। अष्टावक्र को भी अनुभव हुआ होगा, उसको कहा बाघ और कांटा कर, यदि बाघ निकलता है तो अहमदाबाद और कांटा निकलता तो इंदौर, चल करा। निकला बाघ, ठीक है, एक बार में तो गलती हो सकती है, 3 बार करो बहुमति जिसकी होगी वो किया जाएगा। और महाराज संत होकर जुगाड़ करना
ऐसा भी लग रहा था कि अच्छा तो नहीं है लेकिन अब हो रहा है तो क्या दबा है।
तीनों बार भाग आया। मैंने कहा गाड़ी लगाओ इधर। गाड़ी पहुंच गई इधर और वहां से तारे आई और शंकर गया, उसने टेलीफोन कराया बापू को, इधर भेजो, लोग इंतजार कर रहे हैं, अलाउंस हो गया है और यहाँ बहुत कुछ लोगों को ऐसा है वैसा है। गाड़ी इधर गई तो गाड़ी को गैरेज में चेक कराने को भेज दिया। गैरेज वाले ने कहा कि गाड़ी का जो अगले व्हील का जो पिन है वो निकला हुआ है, अगले व्हील का पिन निकला हुआ है, 80 से कम तो बाबा जी की गाड़ी चलना भी मुश्किल है, हाईवे पे 70, 80, 90 पे चलती है, और अगला व्हील की पिन निकल गई और 90 और 80 की गति से जब इंदौर के रास्ते पड़ गए चले और व्हील कहीं का कहीं निकले तो गाड़ी और गाड़ी में बैठने वालों की क्या हालत हो सकती है कल्पना करो, और उनको तो पता भी नहीं पिन क्या होती है। गैरेज वाले ने बात बताया कि व्हील की पिन निकला हुआ था, पिन बिन फिट हुई और दूसरे दिन गाड़ी यहां से लेके, हालांकि जाने के यहां पहुंचने के बाद जाने का कोई विचार ही नहीं था, फिर भी गए। क्यों गए कि बाल मुकुंद बाबा का स्वभाव थोड़ा सुना हुआ था कि इधर आ गए हैं और उनको सत्संग या संत क्या होते हैं, संत का सानिध्य कितना मूल्यवान होता है, वे वो फाउंडर जानते थे, उनके आश्रम में जाने के लिए मैं यहां से रवाना हुआ। और दूसरी कोई प्रशंसा नहीं कि मैंने केवल बाल मुकुंद के विषय में इतना बताया कि बाल मुकुंद जी बाबा ये कहते थे कि मेरा शब पड़ा रह जाए अथवा मैं मरने को हो जाऊं और सत्संग चालू हो तो मेरी ठाठड़ी पड़ी रह जाए, मेरा शब ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाए और सत्संग चालू होना चाहिए, तो मेरे पीछे और सब करोगे तो मैं राजी नहीं होऊंगा, मेरा कुछ भी न करोगे लेकिन सत्संग करते और करवाते रहोगे ना तो मेरे आत्मा को संतोष होगा, मैं राजी रहूंगा। वो जानते थे कि मुख्य काम क्या है, खास काम क्या है, और हम लोग ऐसा नहीं जानते। अभी कोई का टेलीफोन आ जाए पेलो मौदू से बापू मारे खास काम छे, और बाल मुकुंद ने कहा कि मेरी अर्थी पड़ी हो और सत्संग का समय होता हो तो सत्संग चालू रखना, अर्थी बाद में पहुंचाना, ऐसा कहा गया। तब मेरे को लगा कि ऐसे पुरुष ने जो आश्रम बनाया है तो उस आश्रम में जिज्ञासु भी मिल जाएंगे और हम जाते हैं, और गए तो वहां के इंदौर के लोग यहां भी तो पहुंच गए। बहुना अत्र की मुक्ते न ज्ञात तत्व महाशय भोग मोक्ष निराकांक्षी ही सदा सर्वत्र नीरस। अब इंदौर जाने का भी रस नहीं है, अहमदाबाद आने का भी रस नहीं है, अब बाघ और कांटा करता है, बाघ ही बाघ करता है, बाघ जैसा बताता है, 10 पैसे वाला बाघ जो बताता है वो करके, और उसमें भी कुछ राज छुपा है। तुम्हारा जब कोई आश्रय नहीं होता है, तुम्हारी जब कोई इच्छा और वासना नहीं होती ना, तो कितने भी विघ्न होते हैं वो विघ्न प्रकृति अपने ढंग से किसी न किसी ढंग से व्यवस्था करके दूर कर देती है। तुमको अपने लिए कोई आश्रय नहीं रहेगा कि अब मेरा उधर क्या होगा, इधर भला होगा कि इधर भला होगा, गाड़ी चेक कर लूंगी, ये चेक कर लूं, नहीं, अपना तुम्हारा जीने का कोई आशय नहीं, मरने का कोई भय नहीं, वाहवा की कोई इच्छा नहीं, निंदा का कोई भय नहीं, यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण तुम्हारे लिए कोई सार नहीं लगेगा। जब तुम सार को पालोगे तो तुम्हारे लिए कोई सार नहीं लगेगा। जब तक सार को नहीं पाया तब तक सब सार दिख रहे हैं, और मन कई कई जगह पर सार दिखा था और अंत में वही मन बोलता क्या सार है। गरीब जब निर्धन होता है ना तो समझता धन में सार है, धन मिलता है तो बोलता है वो अधिक धन में सार है, अधिक धन मिल जाए मन बोलता है कि वहां कहीं नहीं, चलो छोड़ो, चलो बापू के पास। कोई सत्ता में सार दिखाता है, कोई कहीं सार दिखाता है, कहीं सार दिखाता है, लेकिन जब तब तो ज्ञान होगा तब पता चलेगा कि सारे के सारे आज तक के मन के सब खेल थे, मन के सब धोखे थे, सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं भोग मोक्ष निराकांक्षी ही, वो बुद्ध पुरुष को भोग तो नहीं चाहिए लेकिन अब मोक्ष की भी उसको आकांक्षा नहीं रही, भोग तो नहीं चाहिए, यहाँ से धान स्वर्ग देवी देवता जीना मरना ये तो कुछ नहीं चाहिए, वो मोक्ष का पथिक है, नहीं वो मोक्ष का भी पथिक नहीं, अब उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष की भी आकांक्षा उसे नहीं है। भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि भगवान का भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता है, भगवान का भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, वो भक्ति चाहता है, लेकिन वो बुद्ध पुरुष मोक्ष भी नहीं चाहता है और भक्ति भी नहीं चाहता, भोग भी नहीं चाहता। भक्ति से पृथक होगा तब तक करोगे। आप बंधन में है तो मोक्ष चाहोगे, जब बंधन भी नहीं है और आपसे पृथक भी नहीं है फिर किस बात की आकांक्षा रहेगी। अष्टावक्र कितनी गहरी बात बता रहे हैं, भोग मोक्ष निराकांक्षी ही सदा सर्वत्र नीरस हो। सदा ऐसा नहीं कि समाधि में बैठा तो संसार से निरसता है अथवा संसार में है तो समाधि से निरसता है, सदा सर्वत्र नीरस। नीरस होते हुए भी रसीला दिखता ये अजब है, अकर्ता होते हुए भी कर्ता दिखता ये अजब है, अजलना होते हुए जन्म वाला दिखता ये अजब है, और कुछ नहीं करना है फिर भी बड़े बड़े आरंभ करता है, अन आरंभ होते हुए भी महा आरंभ ही दिखता है। याज्ञवल्लक जनक को जब उपदेश देते हैं तो जनक ने पूछा कि गुरुजी वो परमहंस कैसा होता है। याज्ञवल्लक बोलते छोड़ इस बात को, छोड़ दे गड़बड़ में पड़ जाएगा। अरे नहीं गुरु जी, सन्यासी परमहंस विरक्त परमहंस कैसा होता है। बोले कल सुबह दिखा दूंगा। शाम को गए और कात्यायनी मैत्री को बांध दिया और दूसरे दिन आके कोपिन पैर के कड़ा हुआ तो बोले जनक परमहंस कैसा होता है देख ले। बोले गुरु जी बैठिए। बोले बात पूरी हो गई। बात पूरी हो गई। बोले गुरु जी पधारो, आप तो मेरे गुरु है। अब बोले अब क्या गुरु और शिष्य और क्या मत? चल दिए तो चल दिए, फिर कभी लौटे नहीं। एक दिन मन उकता गया, बस अब रुक जाओ, समय पूर्णाहुति करना है। पूर्णाहुति करना है लेकिन हो नहीं रही, करना है लेकिन हो नहीं रही, और ये अभी होगी भी नहीं, अभी शाब्दिक होगी। पूर्णाहुति तो तब होगी जब तुम पूर्णता को पहुंच लोगे। ज्यादा क्या बोलना, ऐसा करते करते ही बोला जा रहा है। बहुना अत्र की मुक्ति, कुछ और बता दे, कुछ और बता दे। जब तुम निकल जाते हो फिर याद आता है, अरे ये थोड़ा बता दिया होता तो अच्छा होता, और थोड़ा इतना बता दिया होता तो अच्छा होता। किसी को टीबी हुई हो तो दवाइयों की शरण मत लेना, ऐसे ऐसे करना तो टीबी उतर जाएगी। किसी को दम हुआ हो तो ऐसे ऐसे करना। अब एक एक व्यक्ति को क्या बताए, माइक में बताए तो सत्संग का विषय मारा जाता है, अब क्या करे, तो पुस्तक में लगा दिया। अब जिस आश्रम की पुस्तक और जिस संत के नाम से प्रकाशन संस्था है वो संत कह दे कि ये पुस्तक ले जाना 25 पैसे वाली है, 60 पैसे वाली, तो शर्म की भी बात है। वो शर्म को बेशर्मी में बदल के कहता हूँ केड़ा वाली पुस्तक ले तो जजे गई किम बहुना तो की मुक्त हो रहा, और क्या कहना है बताओ। अच्छा वो तुम्हारा चूरन ले जाना, चूरन। अरे भाई हम चूरन का प्रचार करना है तो मैं जानता हूँ, रेडियो वाले को जरा 100-200 दे दो तो लाखों रुपए तुम महीने में कमा सकते हो, ये मुझे अकल है। चूरन से लाख रुपए महीने कमाना है तुम कमा सकते हैं, समिति कमा सकते हैं, भाव भाव जो लोग बनाते हैं जैसे फार्मेसी वाले, ऐसी विधि कर लें तो लाख रुपए महीने में तो यूं कमा सकते हैं इस चूरण से, ऐसा ऐसा चूरण में है। फिर भी व्यक्ति व्यक्ति को कहता, अच्छा पहली बार आए, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कैसा करते हैं, सफरचंद आया अलग, अब गिना जाए तो 2 रुपए की तो बर्सादी हो जाएगी। उसको बोलता हूँ 1 रुपए वाली चूरण की पूरी ले जाना, किम बहुना अत्र उत्ते, क्योंकि आत्मीयता कोई ऐसा ही है। और आशा रामायण गाते हैं, मलुक चंद बैठे हैं और उनको एक बार निखालसता से उन्होंने बोला कि हमको तो लगता है बापू आपने डांट दिया तो भी हम इस द्वार पे आते रहते हैं, वैसे तो जैनी है, और मैंने एक बार पूछा कि ध्यान में बैठूं कि नहीं, तो आपने कहा नहीं, और बड़ा डांट दिया, तो मेरे को लगा कि ये संत कैसा है, हमको पहचानता भी नहीं है, ऐसा भी लगा, फिर भी मैं आता रहता हूँ, लगा कि ये द्वार ऐसा ही है, कुछ मिलेगा मिलेगा ऐसा समझ के मैं आता रहता हूँ। और कभी कभी कुछ लगता कि आशा रामायण पढ़ते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, ऐसा अपना ही फिर ऐसा मैं भी जानता हूँ कि वर राजा ना गीत जानिया गाए तो शोभे, अंतेलो गाए तो गांडो दिखाए। मेरे को पता है भैया थोड़ा बहुत, अब फिर गाए जा रहा हूँ, फिर गाय जा रहा हूँ, पता की है वरा जन गीत जानिया गाय तो शोभे, पोते गाय तो ओम बेखाए, ये जोड़ तुम चपाए गाय जो छु बहुना अत्र किम उगते न, उनके भीतर क्या होता है। अब इस उन महाशयों के लिए ज्यादा इधर क्या कहा जाए। बुद्ध को समझने के लिए थोड़ा बुद्धत्व चाहिए, धनवान होने के लिए थोड़ा धन चाहिए, शांति पाने के लिए भी थोड़ी शांति चाहिए, ऐसा ही है। इसलिए वशिष्ठ जी के वचन बहुत बहुत बार में दोहराए जा रहा हूँ, मैंने कितनी बार मैंने दोहराए हैं और दोहराता ही जाऊंगा, अष्टावक्र का वचन दोहराया जाऊंगा। बात तो इतनी करनी है, जगत मिथ्या है, शरीर कोई सार नहीं, संसार सब सपना है, तुम परब्रह्म परमात्मा, ये भी लंबा है, इतना ही कहना है कि तत्त्वमसि ओ आनंद स्वरूप ईश्वर तुम हो, इतना ही कहना है बस। और आज तक शास्त्र चले जा रहे हैं किए जा रहे हैं, प्रणव का मंत्र 3 महीने तुम जप करो प्रतिदिन 1 कलाक, और स्थूल बॉडी से वाइब्रेशन पैदा हो ऐसा, तो स्थूल शरीर में कुछ ऐसा ओज और बल पैदा होगा कि तुम्हारे शारीरिक जो कलमश है कम हो जाएंगे। 3 महीना मानसिक जब करोगे तो मानसिक शक्तियां विकसित होगी, और फिर आगे चक्र पे ध्यान जब करोगे तो कुछ ये हिलन चालन या ये है वो कम हो जाएगा, जो क्रियाएं नहीं चाहता है उसको ध्यान यहाँ करना चाहिए। अच्छा, और बाकी के 3 महीने जब करोगे मध्यमा में, तब तुम्हारे अंदर अनुपम सामर्थ्य आ जाएगा, और उन दिनों में तुम समाज के बीच ज्यादा मत रहना, ज्यादा मत बोलना, रहना भले समाज के बीच लेकिन ऐसा मत रहना कि तुम बिखर जाओ। अब ऐसे से कुछ प्रयोग हैं। दूसरा एक प्रयोग है कि रात्रि को आप जल्दी सो जाएं और फिर जल्दी उठें, 6 महीने के अंदर साक्षात्कार की खबरें आने लगती। 6 महीने तो दूर की बात है, एक बच्ची ने की थी, हेमी बहन ने, उसका नाम है, यहीं रही थी आश्रम में 15-20 दिन रही थी, और उसके बहुत सुंदर अच्छे बढ़िया से बढ़िया उसको अनुभव होने लगे। अनुभव कैसे, जैसे तुम्हारे कुंडली जाती है ऐसे अनुभव नहीं होते उसमें, वो ज्ञान मार्ग का रास्ता है, उसमें क्रियाएं नहीं होती है। शांति 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 शांति, व्यापकता व्यापकता, चेतना चेतना चेतना, और बल बल बल, और वो कल्पना का नहीं होता। तो एक प्रयोग है, यदि कोई करना चाहे जगत को सुधारने के समय को बचाकर कोई करना चाहे तो 6 महीने में उसकी बढ़िया स्थिति हो सकती है। 1-2 बार मैंने वो संकेत भी किया है, लेकिन उसकी विधि किसी को जाहिर में बताने जैसी नहीं, क्योंकि वो करेगा तो बहुत शक्तियां आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है, और वो सामर्थ्य यदि शुरुआत में खर्चने लग जाए तो फिर कितने दिन खर्चता रहे लब्स तुम्हारा है, और उतने दिनों में तो फिर शायद हमारा और तुम्हारा कांटेक्ट टूट जाएगा, और न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए वो विषय वो प्रयोग उसी को बताया जाएगा कि वो 6 महीने ठीक ठीक करे और वो शक्तियों का दुरुपयोग न करे, ये वचन दे, और ईश्वर प्राप्ति में ही उनको लगाए। नहीं तो महाराज 2 महीने तुम करोगे ना तो तुम्हारे को प्रकाश प्रकाश दिखेगा, मेरी सहित करोगे तो, और 3रे महीने में वो तुम्हारा ही प्रकाश निकला हुआ तुम्हारी आकृति धारण कर लेगा, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि क्या आज्ञा है। तुम कहोगे जाओ रूस का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है खबर ले आओ, यहाँ से मुंबई जाना है ट्रेन से तो 10 घंटे, और प्लेन से जाना है तो 35 मिनट, और मन से जाना है तो अमेरिका जाना है तो 1.5 दिन 2 दिन आपका खर्च हो जाता है, 1 दिन खर्च हो जाता है, लेकिन मन से अमेरिका जाना है तो कितनी देर लगती है। बस जितनी देर मन से जाने में लगती है उतनी ही देर उस पुरुष को जाने में लगती है, क्योंकि मनोमय कोश का तेजोमय है, तो प्रकाशमय पुरुष खड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे जाओ दिल्ली फलाना क्या कर रहा है, तो ले आएगा खबर, तुरंत आपको संवेदन हो जाएगा कि ऐसा। तो 3रा महीना होगा तो ऐसा पुरुष आएगा और आपको प्रार्थना करेगा क्या आज्ञा, और यदि आप उस आज्ञा देने में और उसके परिणाम देखने में लग गए तो आपकी जैसी जैसी वासना है उसका उसी रीत से आप उनका उपयोग भी करेंगे, और आप फिर फैल जाएंगे, बह जाएंगे इस नाटिका में। यदि आपके पास सदगुरु को वचन दिया हुआ है और कुछ तैयारी है सत्य पालने की तो आप उसको वो यदि दिखेगा वो हो जाए कृपा तो न भी दिखे, वो तंग हो जाए तो वो बाहर न भी आए और भीतर ही भीतर उसकी समाधान अवस्था आ जाए, नहीं तो फिर आप उसको प्रार्थना करेंगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ देखना नहीं है, कोई मेरे को यदि सहयोग देता है तो तू मेरे से बाहर मत भाग, तू मेरे में शांत हो जा भैया। भूत प्रेत नहीं होता है, कोई करण पिशाच चीज नहीं होती, तुम्हारा ही एक परमात्मा चेतना की एक वृत्ति का हिस्सा होता है, शक्ति होती है, ईश्वरी शक्ति का जो जो को नाम जो भी दो, नाम देने से गड़बड़ पड़ जाती है। 4वां महीना जब होता है तो प्रकृति के राज और रहस्य तुम्हारे अंदर खुलने लग जाते हैं। 5वां महीना होता है तो दूसरे के चित्त का तुम्हारे अंदर ज्यों का त्यों होने लगता है, और तुम यदि विशाल हो तो बढ़िया है, नहीं तो एक एक आदमी के गुण दोष देखकर तुम परेशान हो जाओगे। नारायण स्वामी ने मेरे को बताया ताजपुरा वाले के, मैं गुफा में बैठा हूँ और सब कोई आता है तो सब उसका देखे जैसे फिल्म देखते ना ऐसा देखते, फिर तो ऐसा लगता है कि ये इधर क्यों आता है रे और बाहर आया प्रणाम करे और उसका पहले वाला ये सब देखे और अंदर में कुछ और बाहर में यूं करे तो कैसा लगता हो। ये तो अच्छा है कि सबको दूसरे के मन की खबर नहीं पड़ती, नहीं तो एक दूसरे का सिर काट डाले लोग। सच बोलता हूं मैं, ये तो भगवान की कृपा है कि एक दूसरे के चित्त की बोले हमें भी जाना, मन नहीं बात जानी है, योग करनी है। अरे जान सो तो वही लड़ाई थी जैसे माथा फोड़ी ना भी जाना, ऐसा ज्ञान हो जाता है, विशालता आ जाती है तो चल जाता है सब। चलो अपना है अपना है, आपका शरीर कोई भी दांत के बीच जीव आ जाती है ना तो फिर क्या करते हो, खा लेते हो ना, गुड़ खा लेते हो। ऐसे ही कोई का कैसे भी आते तो आपको फिर खुशी का गुड़ ही खार जाना पड़ता है, वो स्वभाव हो जाता है। नहीं तो एक एक आदमी का कोई तो ऐसा है, यहाँ तो सती सावधि तो कोई नहीं होता, कुछ न कुछ है कमी, तभी तो जीव होकर आए है। और जीव होकर आए तो जीव शु करे, जीव शु शु करी सके, એનાથી સુખ લેવા માટે બનતું બધું કર્યું એને। લો જયરામજી થી ટૂંકામાં મોઘમમાં કહ્યું આમ ઢાંકીને, બહુના અત્ર કી મુક્તે ના શ્લોક ચાલ રહા હૈ, ક્યા કિયા જાય, બહુના અત્ર કી મુક્તે ના, એ જયારે ક્યાં કહા જાય। સુખ લેને કે લીએ જી જો જો ભી કર સકતા હૈ, જિસ જિસ ક્ષેત્ર મેં ઓર જહાં જહાં ભી જો ઉસકે પૈર હાથ લંબે કર સકતા હૈ વો કર લેગા। जिसके पास जो योग्यता है, क्षमता है, साहस है, हिम्मत है, सुख लेने के लिए वो सब कर सकता है। फिर मुनीन की जगह पे तो सेठ को अंजन आंजेगा, सेठ की जगह पे तो टैक्स को आंजेगा, टैक्स की जगह पर तो सरकार को आंजेगा, सरकार की जगह पर है तो जनता को आंजेगा। लेकिन सब सुख लेने के लिए सब कर ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने अपने मौके का कुछ छोड़ा भी हो। एक करवा मत, गुण दोष तो होते ही है। कोई भी आदमी का आपको कुछ दिखने लग जाए तो उसके गुण भी दिखेंगे और दोष भी दिखेंगे, और गुण तो होते हैं चपटी और दोष होते हैं। तो नारायण स्वामी को कई महीने बड़ी परेशानी हुई और वो अच्छे सज्जन संत है, हृदय खोल के बोले थे और वे अपने अनुभव किसी पर जाके आगे बोलते भी नहीं, तो हमारे जैसे नादान लोग माइक पर ले बैठते नहीं तो ये बोले नहीं जाते। जयराम जी की, इसीलिए हमारे जैसों को खतरा भी मोल लेना पड़ता है। हालांकि मेरी चित्त से अपने चित्त से किसी के साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा सत्य नग्न सत्य बोलता हूँ ना तो लोग मेरे को दुश्मन बना लेते हैं। मैं तो उन्हें दुश्मन आज तक नहीं बना पाया, इसलिए वो सफल भी नहीं हो पाते कोई। जयराम जी के, तुम जब तक किसी को दुश्मन नहीं बनाते ना तब तक दुश्मन सफल भी नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। वो भले तुम्हें दुश्मन बना ले, तुम किसी को भीतर से दुश्मन मत बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा बुद्ध पुरुषों का स्वभाव होता है। बहुना अत्र किम उक्तेना, और तुम्हें ज्यादा क्या बताऊं यहाँ। हो बच्चों ने रख दिया श्लोक ऐसा, इसलिए ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। बहुत कहने से हाँ, बहुत कहने क्या कहूं, निज घर में आराम, साधु संतोषी भला अनपेक्ष निष्काम। कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष, अपेक्षा माना अपमाना, नहीं क्षय अपमाना देखना, क्षय माना नाश होना, जिसका देखना नाश हो गया उन्हें अपेक्षाएं होती है। तो बुद्ध पुरुष कैसे होते हैं, अनपेक्ष है, फिर शुचि वाले होते हैं, अंदर और बाहर से उनके ज्ञान की दृष्टि के कारण वे शुद्ध होते हैं, तन और मन को शुद्ध रखते हैं। छोटी छोटी चीजों में मन शुद्ध न हो और छोटी छोटी शुद्धि अशुद्धि में तन भी न गिरे, ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीन, उदासीन शब्द का अर्थ जब इस देश के भक्तों ने और इस देश के धार्मिक लोगों ने करा, उदासीन एटले आपड़े उदासीन छे। उदासीन का अर्थ है कि अपना कुछ नहीं जाता, माने तो चाहे को नृप हो हमें का हानि, उदासीन नहीं नहीं ये पलायनवाद है, कहा चाहे कोई नृप हो हमें क्या हानि, तुम्हारे को हानि और लाभ होता है, नृप भी ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बढ़ते जाएंगे, सीमेंट मिलता ही नहीं जाएगा बाजार में, ब्लैक में जितना चाहिए मिलेगा, 80-90 में मिलेगा, टन के टन मिलेंगे, और आश्रम बनाना है तो 2 थैली भी नहीं मिलेगा क्योंकि माल स्टॉक में नहीं, जेने 10 रुपया थैली पैसा आता है ना माटे सही था, बीजा माटे थैश नहीं। चाहे को नृप होने हो कहने से काम नहीं चलता है, ऐसी उदासीनता नहीं। प्रारब्ध वेग से कुछ हो गया है, अब परिस्थितियां ऐसी है तो चित्त में विक्षेप मत करो, और चित्त विक्षिप्त होगा तो द्वेष और राग से तुम्हारी शक्तियां क्षय होगी, इसलिए तुम संतोषी जीवन गुजारो वो तो ठीक है, उदासीन का अर्थ ये नहीं कि चलो अपने उदास है उदास है उदास है, तो फिर निराशा हताशा और पलायनवाद सिर पर आ जाता है। और निराशा हताशा और जब पलायनवाद का अर्थ हम ले लेते हैं तब धर्म के नाम पर अधर्म शुरू हो जाता है। धार्मिकता फिर हमारी दरिद्रता हो जाती है, भक्ति फिर हमारा भगतड़ापना बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले के जमाने में राजाओं के पास जो नहीं होता था वो ऋषियों के पास होता था। ऋषियों के इतने बड़े आश्रम थे कि राज्य खुट जाते थे तो आश्रम के तरफ से उनको मदद मिलती थी। नागार्जुन को पूरी सेना को आश्रम में रहने को मिला, खाने को मिला। वशिष्ठ आदि किसी किसी के पास थे अक्षय पात्र, बाकी के पास ऋषियों के पास, और वशिष्ठ के थे राम जी, ऋषि के पास बुद्ध पुरुष के पास महाशय के पास जो भी होता है ना वो बहुत लोगों के सत्कार में लगता है, और अहंकार के पास जो होता है वो अपने अहंकार सृजन में लगता है। ज्ञानवान के पास जो भी चीज होती है वो शोभा देती है, और अज्ञानी के पास जो होती है वो अपना और दूसरे का दोनों का सत्यानाश करती है। हिटलर के पास सत्ता और लोक हो तो दूसरों के गर्दन कटेंगे, और नानक के पास सत्ता और लोक हो तो दूसरों का अज्ञान कट के आत्मज्ञान होता है। मेरे को कहा था किसी बहन ने कि साधु को फकीर को कुछ रखना नहीं चाहिए, मैं तो राजी हुआ, बात तो ठीक है, फिर भी मैंने डांट दिया क्यों रखना नहीं चाहिए, तुम्हें रखो लाखों रखो, हमें 3 रुपया ना रखिए कम। तुम 3-3 लाख की कार में घूमो और हम पुराने 6,000 के लिए अम्बेसडर भी नहीं रखें, क्यों क्या समझते तुम लोग अपने को मनी मत। मेरे को कृष्ण भाई से मैंने पूछा कि अब इधर उधर जाना आना होता है और आश्रम के पैसों से तो गाड़ी ली भी नहीं, और हम जब जलपान करते ना तो उसका भी आश्रम में दिया जाता है, मिलता है आश्रम को समिति को, वो खर्च मेरा जो रहन सहन का खान का है ना वो भी खर्च समिति को मिलता है। ठक्कर नगर में बचपन के जो एक मकान था लिया हुआ नाम पर उसका किराया यहाँ आता है, आबू का जो था उसका यहाँ आता है, समिति में आता है, समिति वालों को पता है। तो हालांकि मैंने समिति के तुम्हारे लोगों के पैसे से तो कार लेना भी नहीं था, नहीं ली थी। कृष्ण भाई को मैंने पूछा कि कार ले ले तो आपने शू जरूर से आश्रम ने, जेने जरूर से कार लावशे ने आप जवानू अपने शू करवा, पोते 50-50 8,000 ની કાર માં ફરે વાલા અને 8,000 ની કાર લેતા હતા ત્યારે કે આપણે શું જરૂર છે, પણ પછી એમની વાત માની ન માની કરીને લઈ લીધી તે 8,000 ની કાર હજી ચાલે છે, ડીઝલનું બીજું ફિટ કરીને ધમાધમ આટલા દાડા લોકોની પાસે આયા ગયા, પેલો લેવા આવે તો એનું પેટ્રોલ ખર્ચ થાય, પાછો લઈ જાય પાછો મૂકી જાય, એને 4 ફેરા પડે નહીંથી જાય અને એનાથી જ પાછી આવે, એટલે બધે થોડું ખર્ચ ઓછું થાય અને લાઈ જનાર બધા કાર વાળા હોતા નથી, અને આ જમાનામાં અમારી બહુ મંદી ચાલે છે, અમે કોઈ કથાકાર નથી એટલે અમારે થોડી સગવડ રાખવી પડે, પેલા બહુ ના અત્ર કી લૂટે ના બહુ ના અત્ર કી લૂટે ના જાદા ક્યાં તમને બતાવું। ત્યાર પછી અમે 3 ગાડીઓ બદલી છે, મને લેવાની ના પાડી હતી, અને એમનો આશ્રય તો ઉદ્દેશ તો ઠીક હતો, છતાં પણ એ વાત મારાથી મનાઈ નહીં, અને કહ્યું એ લઈ લો તો 5,000 જેઠા ભાઈ આપ્યા, 3,000 માખણી આપ્યા મિત્ર, 8,000 ની લીધી, 2,000 નું એન્જિન વેચીને 6,000 ની રાખીને વળી ડીઝલ નું ડીઝલ ની ચડાઈ, ધમધોકા ચાલે છે, કોઈ દાડે એકલો ફરવા ગયો નથી આજ સુધી, ગયો છો નહીં તો આ દાઢીવાળા દોહાન લઈ ગયો, બીજાને લઈ ગયો, ત્રીજાને લઈ ગયો, નામ તો છે બાપુની ગાડી જેમ ફરો છો તો તમે જ ને બધા, કેમ બહુના અત્ર ઉત્તેના દાદા ક્યાં ક્યાં જાય ક્યાં કહા જાય। ખેર એ તો શુદ્ર વિષય હૈ, ગાડી લેના ન લેના ઉસકા કોઈ બડી બાત નહીં હૈ, બડી બાત તો યે હૈ કે બહુત કહેને સે ક્યા કહો નિજ ઘર મે આરામ, આપ નિજ ઘર મે આરામ પાઈએ, ફિર કાળ હો તો હો ન હો તો ન હો। ઓર મેને એસા ભી સોચા કે દુષ્કાળ મે યદિ કહી સત પ્રવૃત્તિ હોતી હો તો યે કાર દાવ પે લગા કે અનાજ બનાજ બાંધ દે સમિતિ, એસા ભી કહા દિયા એક દો બાર, કૃષ્ણ ભાઈ કો ભી પરસોં કહા થા, अब तो परिचय हो गया है, बिना हम कार के भी चल सकता है, लोग कार ले आ रहे हैं तो ये कार बेच डालना है तो बेच दो, और हमने अर्पण कर दी समिति को। ये कोई विषय बड़ा विषय नहीं है, कार आना जाना पैसे आना जाना या रखना न रखना, बड़ा विषय तो ये है कि तुम्हारी चित्त की वृत्ति तुम्हारी स्थिति जगत को सच्चा मानने में तो नहीं हो रही है। फिर तुम कार में बैठो तो क्या, बलून में बैठो तो क्या, और पैदल जाओ तो क्या, गधे पर डबल सवारी बैठो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार दाल को तगड़ा गधा था, आ जा बैठ, डबल सवारी हम बैठे थे, ऊंट पे डबल सवारी बैठे थे, किम बहुना अत्र और क्या तुम्हें बताया जो श्लोक ऐसा रख दिया ने बच्चों ने किम बहुनात्र हरिद्वार में सड़क पर जा रहे थे और शनिचर था, कटोरे में शनिचर के वो पत्रे की मूर्ति है, शनिवार दिखाए जो कुछ लोग मिट मंगाए। तो मैं गया दसिया डाला, हमें क्या महाराज अब हमारा क्या होगा, हमारा पैर में देखा कोई चक्कर है क्या? बोले ऐसे हाथ नहीं होते, देखा है दाढ़ी वाला इसके पास क्या होगा? बोले पांच आने होंगे। मैं क्या पांच आने नहीं महाराज, जवाने में शब्दों ने। बोले नहीं नहीं पूरा देखना है तो पांच आना। मैं चवनी आ सके मुझे एक आना जरा जाने दो। तो उसने हाथ पाथ देख के सब बताया और शिवलाज मुंह दबा दबा के हंस रहा है कि मौनाथ अब इधर क्या मौत बोले तुम्हें। उन लोगों को महाशयों को कौन सी तराजू में कब रखे तुम कोई पता नहीं। लीलाशाह बापू मुंबई में टहलने गए, टहलते टहलते वो अब ज्ञानी को तो ज्ञानी तो ज्ञानी है, सर्वत्र ब्रह्म है, तो उसके लिए भीड़ भरा था और एकांत सब बैठी हो, एकांत में भी हो जाते हैं कभी, भीड़ में भी सैर करने को लेकर पड़े। चौपाटी पे कोई ज्योतिषी बैठा था और बैठते हैं जैसे ज्योतिषी जिसको ज्योतिषी आजकल के लोग ज्योतिषी जिसको बोलते हैं वो ज्योतिषी बैठा था। एक दो आदमी दिखा भी रहे थे तो लीलाशाह बापू भी भगत बन के बैठ गए। हजर मेरा हाथ देखे उसने कहा तुम अपने मन में कोई फूल की इच्छा रखो, कोई भी फूल अपने मन में रखो, जो रखोगे वो हम बता देंगे। बापू ने तो रख दिया और वो उनके पास वो कोई अंतर्यामी नहीं होते, वो टैक्ट होती है। बोले गुलाब तो आपके चेहरे को पढ़ लेते हैं, आपने गुलाब हाँ होगा तो आपका चेहरा हाँ कह देगा, आपने मोतिया रखा होगा तो हाँ कह दो। बोले गुलाब तो बापू तो सचे थे, बोले हाँ भाई सच्ची बात है। अच्छा हाथ देखो। बोले महाराज तुम्हारी उम्र तो बहुत हो गई, तुमने घर छोड़ा देख लिया, अब तुम्हारे को भगवान में श्रद्धा तो है, भगवान की भक्ति तो करते हो। अच्छा ये अब उसको पता नहीं कौन से सम्राट के हाथ को मैं धोखा दे रहा हूँ और मजे से धोखा भी स्वीकार कर रहे हैं। बोले महाराज अब बाकी तीन साल तुम कड़ा परिश्रम करो तो तुम्हारे को भगवान मिलेगा। अब हालांकि 40 साल पहले भगवान मिला था, 40 साल से पहले, 40 साल पहले से वो भगवत स्वरूप है, भगवान मिलने के भगवत स्वरूप हो जाते हैं ज्ञानी तो। बोले यार तीन साल कोई कम कर देने। बोले तो फिर कोई जप बप कराओ। ब्राह्मण भगवान को भी दो घंटा पहले जन्म दे देते हैं, रात को देखा परमाणु को है क्यों बहुनात्र। स्वामी जी ने निर्वाण को कहा इसको 5 रुपए दे दे बेचारे को, कुछ भी हो मेरा हाथ तो इसके हाथ में आ गया है ना, भले लुच्चा है ढोंगी है कुछ भी है, कुछ का कुछ बकता है, 5 रुपए दे दे इसको, 5 रुपए दे। बोले अच्छा महाराज आप मेहनत करना दुआ होगी। लीलाशाह बोलते आशीर्वाद कर दे। बहुना तो किन उगते रहो और क्या बोलो उनके लिए, फकीरों के लिए, बाबा महाशयों के लिए क्या बोला जाए। श्लोक बच्चों ने ढूंढ ढूंढ के रखा है विरागिरी का। फिर उठने को है, सोचते हैं कि अरे 5 रुपए भी दिए, सिर पर हाथ भी रखवाया तो सिर को और हाथ को दोनों को स्पर्श किया, फिर भी ये बेचारा अनजान रह जाए ठीक नहीं है। फिर लौटे कि भाई तो क्या बोलता है। बोले महाराज मिल जाएगा भगवान। बोले गांडा तेरे को पता नहीं भगवान का बाप लगता हूँ, चलो ताकि नहीं। बोले महाराज मेरे को पता नहीं था, बता पैर छू, पैर छुआए सिर पे हाथ रखा, बहुना अत्र की लूटे ना। ऐसी व्याख्या है गड़बड़ व्याख्या। मैंने सुनाई थी एक बार वो कथा, भायोजित नाम का फकीर जंगल में घूम रहा था, हाल मस्त अट्टा कट्टा। उस जमाने की बात है जब गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, 8 लोग थे और उन्होंने देखा कि ये आदमी रखड़ता हुआ यदि आ जाए पैसे खूब मिलेंगे, अट्टा कट्टा ताजा तवाना है, और जब बेचने के लायक शूली पे लगाने के लायक जब जब मिले तब बुद्ध पुरुष मिले, सचमुच लायक व्यक्ति है ना। उन्होंने विचार किया कि इनको पकड़ा जाए, नजीक आए जो नजीक आए त्यों हिम्मत हार बैठे, और वो एक है वहां 8 है। तो फकीर ने कहा कि भाई माया जी ने कहा क्या बात है, डरते क्यों, जब हम निर्भय है तो तुम डरते क्यों। बोले आपको देख के डरते हैं। बोले तुम आठ हो मैं एक हूँ, मैं तुमको करूंगा कुछ नहीं, आओ नजीक आओ, क्या बात है बोलो, कुछ कहो सुनो। तो क्या है महाराज, बोले आ जाओ आ जाओ, आ गए। क्या मर्जी है, क्या चाहते हो। बोले चाहते कुछ नहीं, हम लोग लुटेरे हैं, हम डकैत हैं, आदमी को डाका डाल के पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं और हमारा गुजरान चलाते, तो हम तुमको पकड़ने आए हैं। लेकिन डर लगता है। उन्होंने कहा नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, पकड़ लो चलो, क्या बात है। बोले हम आपको बेचने को ले जाएंगे, हम आपको गुलाम बनाने को आए। भाई जी बोले अच्छा जी, बन गए गुलाम समझो, बन गए गुलाम, भी बनना हमारे हाथ की बात है, जब हम अपने मन के स्वामी तो थोड़ी देर गुलाम का भी कर लेंगे स्वामी, क्या फर्क पड़ता है, हम बन गए गुलाम। अच्छा फिर क्या कहते हो। बोले फिर अब हम रस्से डालेंगे, आपको घसीट के ले चलेंगे, जब मैं न चलूं तब रस्से की जरूरत है, मैं तो चल रहा हूँ तुम जहाँ कहो। वो आदमी चकित होगा कि अजीब आदमी है, आज तक पतला दुबला हल्के से हल्के आदमी ने भी चीसें पाड़ी है, हथापच्ची की है, झपाझपी की है, और ये पहला शिकार है जो हमारे अनुकूल है, क्योंकि ज्ञानी सबके अनुकूल हो जाता है, ज्ञानी सब है ना, उसके लिए सबके अनुकूल हो जाता है। तालियां मत बजाओ, खतरा भी है बाद में। सबके अनुकूल होगा, लेकिन सब जो चाहेंगे ऐसा अनुकूल नहीं होगा। तुम चाहो हम हंसते रहें, तुम चाहो हम नाटक में लेट करें, तुम चाहो हम वो करें, तो वो डांटेगा भी, लेकिन तुम्हारे अनुकूल के लिए डांटेगा। समझ गए ना बात को। चली गाड़ी, ये तो अभी तुमने कोई अभी देखा नहीं लीलाशाह बापू का। लीलाशाह बापू ऐसा डांटते थे कि महाराज आपको क्या बताऊं, बहुना प्रकी मुक्ते ना, छोड़ो बात को। घटित घटना सुना तुम, और उनके सगे वाले लोग इधर बैठे हैं मुंबई के, मुंबई में नारायण दास सेठ है और स्वामी जी का भक्त था, और गणेशपुरी में, गणेशपुरी का अर्थ है कि गणेशपुरी एक बड़ी है जैसे साबरमती ऐसे ही, तो गणेशपुरी में नारायण दास का बंगला था, और बापू को कगर के ले जाता था अपने बंगले में, और जहां बापू ठहरते थे, और वो बंगला बड़ा भागशाली रहा होगा कि मेरी घटना वहीं घटी थी। तो अभी उस बंगले में कमरा, जिस कमरे में बापू रहते थे, उसको मंदिर बना दिया, ऐसा वो भक्त है। बापू जब उसके बंगले में ठहरे, सामान उतरा, तो बापू का स्वभाव होता था कि सत्संग करना, वो ले आया कोई ग्रंथ, और नारायण दास सेठ बैठा, कथा चालू हुई और सत्संग शुरू हुआ। 2-5-10 मिनट तो सत्संग चला, फिर जो मुंबई के सेठों की जो हालत होती है, और स्वामी जी भी चुप थे, ध्यान में थे, ध्यान में से जो आंख खुली और देखा कि ये तो नींद कर रहा है, जिसके लिए चल रहा है वो नींद कर रहा है। अरे विरवान बिस्तरा बद, अब इधर बोलूंगा तो माइक का आवाज फट जाएगा। ऐसी डांट दी महाराज, तू क्या समझता है सेठ जा पुट, ऐसा डांटा सेठ, तो माफी लेने क्या रहे, सेठ की पैंट आगे और पीछे दोनों तरफ से खराब हो गए, तुरंत लेटरिन बाथरूम गए। बहू ना अत्र किम उठते न, इधर और जाता तुम्हें क्या कहे, इतनी डांट निपट के आया, पेंट पेंट बदल के फिर आया, अभी जिंदा है, उसके बच्चे भी है और अच्छी पार्टी भी है वो व्यक्ति। ओम ओम, वो भी हिम्मत वाला होगा, तब तो गणेशपुरी में 10-20 लाख का बंगला बना के रखा होगा, लेकिन ऐसी डांट दी, इतनी डांट के बाद भी चित्त में देखो तो पूरी करुणा उदारता है, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। वो साईं तो चले गए, लेकिन वो सेठ ने डांट पचा ली, तो इस कथा में भी सेठ का नाम आ रहा है, कितना भाग्यशाली रहा होगा। उसको तो पता ही नहीं कि मेरी प्रशंसा हो रही है, उसको तो पता नहीं, डांट सह ली तब उसकी इतनी हो रही है। ऐसे पुरुषों के लिए क्या कहा जाए। मायोजीत जब जा रहे हैं, वो आठवां आदमी सोचते कि ये पहला आदमी कि हमको जपा जपी नहीं करनी पड़ती, कोई परेशान नहीं, तो आगे हो जा रहे, पीछे ये जा रहे, कॉटन कर बाजार में लाए गए और चढ़ाए गए मंच पर, लोग इकट्ठे हुए, गुलाम खरीदने वाले, लगा हुआ आज लोग बकोजी को देखते ठगे रह गए, मायाजीत को देखते ठगे रह गए। आवाज लगा वो डाकू कह रहे हैं, कोई आवाज नहीं लगाता, सबको अच्छे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है खरीद करने की। ज्ञानी को खरीद करने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। देखते 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 चुप, फिर आखिर में भाई जी ने कहा कि है कोई गुलाम शहनशाह को खरीदने वाला, है कोई गुलाम मालिक को खरीदने वाला। तब वो आठ आदमियों ने कहा कि बात क्या है, आपको तो हम गुलाम करके ले आए हैं, ऐसा क्यों बोलते हो हमारा धंधा तोड़ोगे। लोगों ने कहा ये क्या बोलते हैं देखो। तब वो फकीर बोलते हैं कि हाँ मैं सही कहता हूँ, है कोई गुलाम स्वामी को खरीदने वाला, आवाज लगाओ कोई गुलाम है स्वामी को खरीदने वाला। कोई खरीदने वाला नहीं मिला, दो पैसे देने वाला नहीं मिला उनके बदले में। ज्ञानी दो पैसे में भी नहीं बिक सकता क्योंकि वो अमूल्य है। बहुना अत्र कीमते न, इधर ज्यादा क्या कहा जाए। लोगों ने जब पूछा कि क्या बात है भाई जी, इतने का क्या बात है, पूछो इनसे गुलाम कौन है, ये गुलाम है कि मैं गुलाम, मैं स्वामी हूँ, स्वामी आगे आ गया है, गुलाम पीछे पीछे आए, और ये मेरे से डर रहे, मैं थोड़े इनसे डरा हूँ। गुलाम कौन है, स्वामी डरता है कि गुलाम डरता है, गुलाम डर रहे हैं, स्वामी निर्भय है, और स्वामी ऊपर होता है सेवक नीचे होते, सेवक है, आए कोई सेवक खरीदने वाला स्वामी को। महाराज उन्होंने माफी ली, और अब जो अपने आप से बंधा नहीं उसको और कौन बांध सकता है, जो अपने आप का स्वामी है उसको दास बना भी कौन सकता है। ज्यादा कहने से क्या लाभ, इतना ही समझ जाओ और पूर्णावधि हो रही है। ये सब कथाओं के पीछे आशय यह है कि तुम उस बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए ही मनुष्य जन्म पाकर आए हो, ऐसा दृढ़ समझना है। मजूरी करने के लिए संसार में